मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 4 फरवरी 2019 है और आज के इस FEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और साथ ही बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राज नारायण प्रसाद, आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, देवाशीष कुमार, गांव आपका है सबदलपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, मुरलीधर झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, मोनिका नांगलोई नई दिल्ली से, मनीष पांडे आपका गांव है खुरमाबाद जिला रोहतास बिहार से, ब्रिजेश यादव आपका गांव है सकहरा जिला बांका बिहार से, आदेश त्रिपाठी जौनपुर उत्तर प्रदेश से और रवि कुमार कटिहार बिहार से। तो राजनारायण, देवाशीष, मुरलीधर, मोनिका, मनीष, ब्रिजेश, आदेश और रवि, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 4 फरवरी में हैं और डेफिनेटली 28 दिन का ही यह फरवरी का महीना है और 3 मार्च से हम लोगों की 15 दिन की क्लासेज शुरू होने वाली हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने से भी अब कम वक्त रह गया है मित्रों, जब आप और हमारी पूरी की पूरी टीम, एकेडमी की टीम एक दूसरे के आमने सामने होगी। लेकिन ये जो आमना सामना है ये कोई मैच वाला आमना सामना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आमने सामने इस मायने में होगी कि हम दोनों मिलकर और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में लगभग 90 घंटे तक लगातार आपस में डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, भले ही आपको ये महसूस हो रहा हो कि अभी 1 महीना लगभग बाकी है, लेकिन आपको अब अपने दिमाग में यह बात ले आनी चाहिए कि नहीं, अब कुछ भी वक्त नहीं बचा है, बस अब आने ही वाला है, बस आ ही गया है। यानी कि अब आप अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कीजिए कि बस हम अब बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और दरवाजा खुलने वाला है और अब एंटर होने वाले हैं। तो मित्रों, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा इस पैटर्न पर आप ढालना शुरू करें और बीच बीच में अब मैं आपकी मानसिक तैयारी के लिए और दूसरी तैयारियों के लिए आप सबको अपने ढंग से बातें बताने की शुरुआत कर चुका हूं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी हालत में आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनना बंद न करें, छोड़ें न, डेली लेक्चर सुने ही। एक बात मैं यहां आप सबसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट इस बीच में मुझसे ईमेल के जरिए पूछ रहे हैं कि सर, हमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बुक लानी है, क्या कौन सी किताबें लानी है। यहां मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, सैद्धांतिक तौर पर आपको अलग अलग नोटबुक लाने की उस तरह से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास अटेंड करनी है वह एक कोई भी नोटबुक, जब आप उसमें जरूरत महसूस करें तो कुछ लिख सकें, और पेन, बस केवल इसकी जरूरत है। एक नोटबुक आपके लिए पर्याप्त होगी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप यहां क्लास अटेंड करेंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे। जहां तक बातें किताबें लाने की हैं फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। अगर आप बीच बीच में कुछ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जब क्लासेस नहीं होंगी तब आप ला सकते हैं। लेकिन जनरली मैं इस बात की सलाह देना चाहूंगा और देता भी रहा हूं कि क्लासेस के बाद जो आपके पास समय बचेगा, बेहतर होगा कि आप उसका इस्तेमाल अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में करें। क्लासेज में जो बातें बताई जाएंगी उनके बारे में आप बातचीत करें, कुछ होमवर्क आपको दिया जाएगा उनके बारे में आप बातचीत करें, आप किसी के साथ रुकेंगे और रहेंगे, उनके स्टेट के बारे में, उनके बारे में, उनकी तैयारियों के बारे में बातचीत करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए इस बात को कतई मत भूलिए कि नेटवर्क जो आपका बनेगा, आपके जो दोस्त बनेंगे वो बातचीत करने के आधार पर ही बनेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि परसों मध्य प्रदेश, चार पांच दिन हो गए मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें जो हमारे सातवें बैच के स्टूडेंट थे तन्मय वर्मा, वो एमपीपीएससी के टॉपर में रहे हैं जिन्हें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी। अब स्वाभाविक है कि उनके साथ जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा, जो उनके दोस्त होंगे, वो उनसे बात करेंगे, उनको बधाइयां देंगे, तो इससे आपकी क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ आपका उत्साह भी बढ़ता है और ऐसे सफल जो स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे आपको मदद भी मिलती है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर इस बात को कहते हैं और पसंद भी करते हैं कि आप दोस्तों के साथ बातचीत करिए। किताबें पढ़ने के लिए तो आपके पास दुनिया भर का वक्त बचा हुआ रहेगा, दुनिया भर का वक्त आप सबको मिलेगा भी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। आप लाना चाहते हैं, आप सफर करेंगे उसमें आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही चाहते हैं, तो उसके लिए कोई मनाही बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं बजट की तैयारी यानी ये नहीं कि सरकार कैसे बजट की तैयारी करती है, बल्कि इस पर बात करना चाहूंगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी बजट आता है तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी दूसरी खबरों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आज के अखबारों में आपने पढ़ी होगी, वह है पश्चिम बंगाल में जो खासकर राज्य पुलिस है और जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके बीच में जो एक विवाद की स्थिति पैदा हुई, तनाव की स्थिति पैदा हुई। आप देख महसूस कर रहे होंगे कि सीबीआई जो संस्था है वो कुछ समय से लगातार बहस के केंद्र में है, कभी उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को लेकर के, कभी सीबीआई के अधिकारियों के आपस के ही विवादों को लेकर के, कभी सीबीआई के निदेशक के अपॉइंटमेंट को लेकर के, कभी सीबीआई के जो निदेशक है वो किन लोगों से मिल रहे हैं उनको लेकर के, वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इस तरह के लगातार सीबीआई बहस के केंद्र में है। ये फिर से एक बहस के केंद्र में सीबीआई आई है। दो तीन दिन पहले आपको पता है कि सीबीआई के निदेशक के रूप में ऋषि कुमार जी का अपॉइंटमेंट हो गया है। अभी जो मामला है वो थोड़ा सा गंभीर किस्म का मामला है और उससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। मामला कुल मिलाकर के ये है कि पहले लगभग दो तीन साल पहले ही शारदा चिटफंड घोटाला एक हुआ था, चिटफंड फंड जो घोटाला होता है, और उसकी उसके लिए एक एसआईटी बनाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई जाती है, उसके जो हेड थे वो अब वर्तमान में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है, उस समय वो एसआईटी के हेड थे। प्रॉब्लम ये है कि जब सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो सीबीआई को यह महसूस हुआ कि उस समय जो एसआईटी के हेड थे, यानी कि अभी राजीव कुमार उनका नाम है और अभी वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें नष्ट किया है, तो उन्हें उनसे पूछताछ के लिए जाना था, यानी कि सीबीआई को कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए जाना था और इसी के लिए वो गए थे। जब वो पूछताछ के लिए वहां गए तो जो सीबीआई की जो टीम थी उसमें से पांच अधिकारियों को जो कलकत्ता की पुलिस थी, यानी कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस थी, वो उठा करके ले गई और इसके बाद जो भी घटना हुआ, कुल मिलाकर के ये है कि स्थिति यहां तक हो गई कि बकायदे वहां जो ऑफिस है उस पे जो केंद्र सरकार को सीआरपीएफ तैनात करनी पड़ी, जो सीबीआई का जो ऑफिस है उसका तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया। अब आप देखिए कि इसमें मामला क्या है, अब सीबीआई इसको कैसे लेगी, केंद्र सरकार कैसे लेगी, राज्य सरकार कैसे लेगी, देखते हैं कि क्या होता है। आपको मालूम है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बकायदे धरने पर बैठ गई हैं और उनको जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। अब इसमें मामला देखिए क्या है, मैं आपको तीन चार पॉइंट्स रेज करके बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीबीआई की का जो गठन हुआ है वो बेसिकली दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुआ है, उसी के तहत सीबीआई को मान्यता दी गई है। तो जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सीबीआई से अपनी सहमति वापस ले ली थी, यानी कि वो नहीं मानती है कि हम सीबीआई को अपने यहां बिना अपने अनुमति के आने देंगे। आपने देखा होगा कि लगभग लगभग आंध्र प्रदेश ने भी यही किया है। तो अगर वो राज्य सरकार उससे अपनी सहमति वापस ले लेती है, उसको मान्यता नहीं देती है, तो स्वाभाविक है कि सीबीआई कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकती, यानी कि राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। और एक बात और भी है कि अगर पुलिस कमिश्नर के आवास पर कोई जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि उसके लिए बकायदे पुलिस से अनुमति ली जाए, जो सीबीआई ने नहीं ली। अब आप देखिए कि इसमें दूसरे क्या क्या मामले बनते हैं, लोग अपने अपने क्या ओपिनियन दे रहे हैं। इस मामले में यह तो साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र और राज्य की जो एजेंसी हैं एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हुई हैं, और यह एक तरह का संवैधानिक संकट भी माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का कहना है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, एक संविधान का अनुच्छेद 226, उसके तहत स्वतः संज्ञान ले सकता है, यानी कि अपनी तरफ से ही कदम उठा करके और बकायदे ये निर्धारित कर सकता है कि सीबीआई के अधिकार क्या है राज्य के अंदर और राज्य पुलिस के अधिकार क्या है। ये एक ओपिनियन है, पहला ओपिनियन मैं आपको बता चुका, इसे आप कह लीजिए दूसरा ओपिनियन है। तीसरा ओपिनियन ये कहता है कि भाई सीबीआई को कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी, और अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो सीबीआई को चाहिए यह था कि इस तरह का टकराव पैदा न करके वो कोर्ट चला जाता, लेकिन यह संकट खड़ा नहीं करना चाहिए था। यह तीसरी ओपिनियन है। चौथी ओपिनियन यह भी है फ्रेंड्स कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को रोकती है, जैसा कि अभी हुआ, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो केंद्र सरकार, फिर आपको मालूम है कि अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो ये अलग अलग जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो कानून विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से बातें रखी हैं। अब देखते हैं कि यह जो पूरा का पूरा मामला है वो क्या रूप लेता है, किस तरह की बहस की शुरुआत होती है, उसके आधार पर फिर हम लोग इस जिस तरह की जरूरत होगी उस पर आगे बातें करेंगे। दोस्तों, मैंने आज मुख्य विषय के रूप में आपसे सीधे सीधे बजट पर बात न करके किसी भी बजट की तैयारी कैसे की जानी चाहिए इस पर बात करने की बात कही है। फिलहाल जो भी मेरे पास वक्त है उसके तहत मैं आपको सन 2017 और सन 2018 में मेंस एग्जामिनेशन में बजट पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं, और इससे आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि इनफैक्ट तैयारी कैसे की जानी चाहिए। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। देखिए 2017 में जो थर्ड पेपर है आपका जनरल स्टडीज मेंस का थर्ड पेपर, उसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें देखिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्य भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। ये 250 शब्दों में आपको लिखना है। ये बजट पर पूछा गया सीधा प्रश्न है। 2018 में भी फिर बजट पर सीधा प्रश्न पूछा गया है, सीधे सीधे प्रश्न है। देखिए क्या है, केंद्रीय बजट 2018-2019 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तथा लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। यह है मित्रों बजट पर पूछे गए सीधे सीधे प्रश्न। अब ये प्रश्न क्यों पूछे गए और क्या है इसका विश्लेषण, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में मित्रों बात करेंगे। चूंकि अब वक्त हो चुका है तो डेफिनेटली मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आप सब अपने ढंग से देख लेंगे। जनसत्ता की मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, विषमता की जड़ें, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और जो बात महत्वपूर्ण लगे उन्हें, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप नोट भी कर लें। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं: सचिन कुमार, समीर पवार सहारनपुर से, रंजीत बेहरा, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, ऋषभ यादव जबलपुर मध्य प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार कान्हेर, सेजल राय, सोनी गंगवार, आमिर हुसैन नई दिल्ली से, सौरभ कोल्हे तथा मनोज कुमार कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।